प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
प्रभु प्यार निरंतर है, सांच को कोई आंच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चा साफ रहे निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे।
ओम शांति। सच्चे दिल पर साहेब राजी, इसका एक आदर्श उदाहरण मूरत हमारी आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत के इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। हमारे यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई और दीदी का लौकिक जन्म यज्ञ स्थापना से एक वर्ष पूर्व 1935 में मुंबई महानगरी में हुआ। समाज सेवा दीदी के जीवन का लक्ष्य था, इसलिए मेडिकल स्टडीज की। लेकिन जैसे ही मेडिकल स्टडीज पूरी हुई ईश्वरीय ज्ञान मिल गया और फिर तो मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों की प्रैक्टिस चलती रही और फिर बाबा की राय अनुसार 1966 में आपने सेवा केंद्र भी खोला, क्लिनिक भी खोला। सेवा केंद्र आपको अपने पिताजी ने दहेज के रूप में दिया, तो दहेज का जो धन होता है पिता का, दीदी ने ब्राह्मण जीवन के शुरुआत से ही धन को कैसे बाबा के कार्य में सफल करना है उसका एक उदाहरण ब्राह्मण जीवन के समक्ष प्रस्तुत किया। और आज दिन तक हम देखते हैं दीदी को कैसे दीदी सबका धन सफल करा के उनको आने वाली नई दुनिया के लिए बहुत उच्च पद के अधिकारी बनाते हैं। तो 66 में जब सेवा केंद्र और क्लिनिक खुला तो दीदी ने दोनों तरीके से मानवता की सेवा करना आरंभ की। लेकिन फिर 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए सिलेक्ट किया। तो 71 से लेकर 78 तक विदेश की धरनी पर अलग अलग स्थानों पर आपने सेवाएं दी। आरंभ में आप लंदन में गए, वहां सेवाएं की, और उसके बाद तो यूनाइटेड किंगडम में अलग अलग स्थानों पर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी, मॉरिशस आदि आदि विभिन्न विदेश की धरनियों पर आप भ्रमण करते रहे और बाबा के बच्चे तैयार करते रहे, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनते रहे। और उसके बाद 1978 में आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और फिर 1978 से 2008 तक ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहकर एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया कि आज की डेट में इस एशिया पैसिफिक रीजन में करीब 18 देश आते हैं जहां पर बाबा के बच्चे निकले हैं, बाबा के सेवा केंद्र खुले हैं। तो वर्तमान में दीदी एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल डायरेक्टर हैं और साथ साथ 2008 के बाद 2009 में हमारे पास मनोहर दादी के अव्यक्त होने के कारण ज्ञान सरोवर का डायरेक्टर पद रिक्त पड़ा था। तो बाबा ने आपको यहाँ बुला लिया तो वर्तमान में आप ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर भी हैं। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ दादियां हमारी अव्यक्त होती चली गई तो यज्ञ का कारोबार बढ़ता गया, जिम्मेवारियां नेक्स्ट जनरेशन पर आती गई। तो आप हमारे संस्था के जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। लेकिन जितनी ज्यादा आपके कंधों पर जिम्मेवारियां बढ़ती जाती हैं, हमने प्रैक्टिकली देखा है, उतने ही ज्यादा दीदी उपराम भी रहते हैं। जितनी ज्यादा जिम्मेवारी, बेशक बिजनेस बढ़ जाता है, लेकिन जितने ज्यादा बिजी फिर उतने ज्यादा इजी भी हम दीदी को देखते हैं। और बहुत कम शब्दों में वार्तालाप भी, बहुत कम शब्दों में, क्लासेस में भी बाबा के ज्ञान के रहस्य भी बहुत कम शब्दों में समझा देते हैं। तो ऐसी हमारी मितभाषी फरिश्ता सदृश आदरणीय दीदी जी आज अपने अनुभव से हम सबके समक्ष रखेंगे कि कैसे सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति।
बाद में प्रश्न भी करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे दीदी, प्रश्न उत्तर। तो लास्ट में दीदी पहले क्लास कराएंगे 30 मिनट करीब करीब, 30-35 मिनट, और उसके बाद आपके लिए खुली मार्जिन है कि आप दीदी से ब्राह्मण जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं।
दुनिया में भी कहते हैं ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, और आज भी बाबा ने बहुत कहा, गलती करो, विकार में जाओ तो बाबा को सच्चे दिल से बता दो तो 50% माफ हो जाएगा। पुराने समय में एक भाई था, उसने गुस्सा किया तो खास मधुबन ब्रह्मा बाबा को मिलने आया। बाबा मेरे से भूल हो गई, गुस्सा हो गया, हमारे हमारे पास भी ऑस्ट्रेलिया में एक भाई था, नया नया था, तो उसने मास्टरबेशन किया और रोता रोता आया हमारे पास कि हमने हमारे से ये भूल हो गई। तो कई लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, कैसी भी भूल बता देते हैं। तो हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ये सच्ची तपस्या है और हर कर्म में श्रीमत पर चलने में ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट अर्थात वफादार, ईमानदार। वो लोग हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाते हैं। साइलेंस की शक्ति द्वारा वो सदा इस जीवन में स्वतः ही और सहज ही चलते रहते हैं। जो आत्माओं को सोचना पड़ता है ये करे वो करे क्या करे, इसका मतलब उनकी गति मध्यम हो जाती है और चलते चलते थकते हैं। मनमत या परमत मिक्स कर देते हैं तो सीधे रास्ते ना चल, भटक टेढ़े बाके रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए उनको वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक और सीधा है और सहज है। तो कई है सीधे को टेढ़ा बना देते हैं, फिर थक जाते हैं, निराश होकर लौटते हैं। इसलिए सेकंड नंबर उनका हो जाता है और अनेक सेकंड गंवाते हैं, शक्ति गंवाते हैं। चल तो रहे हैं परंतु असली चाल और गति चेक करनी है ब्राह्मणों को। जब हम बाबा के बनते हैं, हम कहते हैं बाबा सब कुछ आपका, तन मन धन सब कुछ आपका। यदि कहते हैं मेरा मेरा तो वहां बहुत हेरा फेरा होता है। तन मन धन जो सच्चे दिल वाले हैं वेस्ट नहीं गंवाते। सब बाप की अमानत है ऐसे समझकर चलते हैं। जो अलबेले होते हैं वो वेस्ट करते हैं। अभी समय क्या है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है। कम खर्च बाला नशीन होना चाहिए। बाप दादा ने हमें बहुत खजाने दिए हैं उसको प्रयोग में लाने हैं, और जो प्रयोग में लाते हैं उसकी निशानी प्रगति है। तो हमारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला हो, नशा कम न हो, यदि ठहरती कला है तो हमें प्रयोग करना है। तो ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, उसको कहा जाता है जो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ खजाना बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाते। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत वासंग दोष में व्यर्थ गवाते, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हैं, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, श्रीमत के बजाय मन मत के आधार पर चलते हैं, उनको ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। इसलिए ऑनेस्ट मन सभी खजाने को विश्व कल्याण की सेवा में लगाओ, अमानत में खयामत मत करो। जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे हम भी जो है जैसे हैं बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें, तब कहेंगे ऑनेस्ट। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, कई लोग बाप को ठगते हैं या अपने आप को ठगते हैं, कहते बाप तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना यही सहज चढ़ती कला का साधन है। सभी प्रकार के बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। बाबा को लिख के दो, योग में बताओ और मन हल्का ना हो तो अपनी टीचर को बताओ क्या गलती की है। हर कदम में समर स्थिति व चढ़ती कला का अनुभव, हर संकल्प में बाप के साथ और हाथ का अनुभव हो, तब कहेंगे ऑनेस्ट। तो सदा ऐसे साथ और हाथ का अनुभव करो। सदा हर संकल्प बोल या कर्म द्वारा निमित्त और निर्माण बनना यही ऑनेस्टी है।
इसलिए कभी भी अपनेपन का भान अथवा अहम भाव ना आए। सदा कत्नी और करनी समान हो, जो कहते हो वो करो, यह है स्वयं प्रति ऑनेस्टी। ऐसे नहीं कहना एक और करना दूसरा। सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, सदा श्रेष्ठ कामना, स्वयं का व सर्व का भला हो, किसी भी आत्मा के प्रति अकल्याण की भावना उत्पन्न न हो, तब कहेंगे ऑनेस्ट। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन किसी भी बातों के आधार पर ना हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। ऐसे नहीं बात बदली और फाउंडेशन बदल गया। निश्चय में संशय न आए, क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गए, इसका मतलब ऑनेस्ट नहीं हो। ऑनेस्ट अर्थात कोई भी बात में कभी भी हलचल ना हो। बहन जी, जगाओ उसको। ऑनेस्टी ही तपस्वी की निशानी है। ऑनेस्ट अर्थात वफादार, फरमानदार, ईमानदार, हर सेकंड, हर कर्म, हर कदम एक्यूरेट श्रीमत पर चलना है। श्रीमत सदा स्पष्ट स्मृति में रहे, कभी सोचना ना पड़े कि ये श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या नहीं। ऑनेस्ट आत्मा कभी भी किसी खजाने को वेस्ट नहीं करेंगे। समय का, संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। वो हर खजाने को काम में लगाकर बढ़ाएंगे। किसी भी खजाने को अलबेलेपन के कारण वेस्ट करना, ये ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्ट का अर्थ है हर खजाने को बढ़ाकर स्वयं की प्रगति करने वाला प्रयोगी। योग का प्रयोग करना है ना। जो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं उन पर बाप का और परिवार का प्यार और विश्वास स्वतः ही रहता है, इसलिए उन्हें फुल अधिकार मिल जाता है। वो बड़ों के, छोटों के अथवा समान वालों के विश्वास पात्र होते हैं। वो अविश्वास वालों को भी विश्वास में ले आते हैं। जो बच्चे सदा दिल और दिमाग से ऑनेस्ट अर्थात सच्चे हैं, उन्हें कभी कोई बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वे सिद्ध करने के बजाय सिद्धि स्वरूप होते हैं। तो समझा, ऑनेस्ट सच्चे दिल वाले कैसे होते हैं। अभी किसी को ज्ञान योग धारणा का कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ये यहाँ
बंधन मुक्ति स्थिति कैसे बनाना है, पूरा बंधन मुक्ति स्थिति कैसे बनाना है, बंधन मुक्ति स्थिति, बंधन से मुक्त
क्या,
बंधन से मुक्त।
हाँ दीदी, वो कह रही है बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, बंधनों से।
योग के सिवाय और कोई उपाय नहीं। और दूसरा, पुण्य का काम करो, सेवा, चाहे तन से, मन से, धन से, क्योंकि ये बंधन का कारण है। कुछ पूर्व जन्म में हमने गड़बड़ की है, पाप किए हैं, इसलिए ऐसा साथी मिलते हैं, तो इसलिए पुण्य का काम करो और योग लगाओ। हमारे पास बंबई में एक माता आती थी, वो जिसको ज्ञान योग में बहुत इंटरेस्ट था, बच्चों को भी ले आती थी, पर पवित्र रहती थी तो पति को पसंद नहीं था। पति हमारे पास सेंटर पर आया, कहता है इसको आने नहीं दो। मैंने कहा मंदिर में किसी को मना नहीं करते, आपको नहीं आने देना है तो आप घर में रोको, मैं नहीं रोकूंगी। और 3-4 बार उसको मैके भेज दिया। एक बार रात को 10 बजे जब वो सोने तैयार थी, साड़ी वाड़ी उतार दी थी, घर से बाहर निकाल लिया, तो मेरे कोई काम के नहीं है। तो वो बेचारी छत पर जाकर बैठ गई, दरवाजा बंद कर दिया। अब उसको हल्ला नहीं करना था, सारी रात छत पर बैठी रही। और उन दिनों में बम्बई में सवेरे दूध वाला आता था, तो भाई को खोलना पड़ा, बहन घुस गई उस समय। पर क्लास नहीं बंद किया, योग नहीं बंद किया, और आखिर वो भाई भी ज्ञान में आ गया और पति ज्ञान में आ गया, और क्या हुआ कि उसकी लड़की को भी सरेंडर किया। वो आज सेंटर चलाती है। एक हमारे पास दूसरा बांधेला भाई था, उसकी युगल नहीं आती थी और वो युगल ने खेल किया। एक दिन ट्रेन की पटरी पर सो गई कि मैं तो मर जाऊंगी। एक दिन शरीर पर केरोसिन डाला कि मैं तो मर जाती हूँ। भाई अपना क्लास में आता रहा। पांच बच्चे थे, छोटा ही था पर पांच बच्चे थे। आखिर वो माता भी ज्ञान में आ गए तो हमने देखा है कि हम जितने योग में मजबूत रहते हैं, पढ़ाई में मजबूत रहते हैं और पवित्रता में, तो पार्टनर को आना ही पड़ता है। विदेश में अच्छा है, बहनें भी कमाती है तो क्या करेंगे। यदि भाई पति नहीं आता है ज्ञान में, या ज्ञान में आने नहीं देता, या पवित्र नहीं रहने देता, अलग हो जाती है, स्वतंत्र रह सकती है, समाज का डर नहीं है। यहाँ तो समाज का डर है, अलग नहीं होने देंगे, माँ बाप भी कहेंगे नहीं, बेटी ससुर घर अच्छी। और वहाँ तो हमारे पास एक माता थी, दो बच्चे थे 4-6 साल के, और पति का विरोध था। उसने बच्चे भी पति को दे दिया और अलग हो गए। तो पवित्रता के कारण सारे झगड़े होते हैं, या खान पान के लिए भी होते हैं कि क्यों शादी में नहीं आती है, क्यों शादी में खाना खाती नहीं है, क्यों हमारी माँ के पास खाना नहीं खाती है। उसमें भी झगड़े तो होते ही है। तो भारत में तो कई प्रकार के झगड़े और बंधन हो जाते हैं। विदेश में ये भी अच्छा है कि खाने पीने का बंधन नहीं। हमारे पास एक बहन थी, पार्लियामेंट में काम करती थी, और एमपी जो उसका था, पार्टी वगैरह अरेंज करता था तो उसको करना पड़ता था। और दूसरों के लिए नॉनवेज है, शराब है, ऑर्डर करती थी, पर अपने लिए फ्रूट। अब फ्रूट में विदेश में तो क्या करते हैं, कलर वाले फ्रूट, ग्रीन, रेड, येलो, वाइट, ब्लू, ऐसे बहुत अच्छी थाली सजा कर देते हैं रेस्टोरेंट में। तो जो उसके बाजू में बैठते थे कहते थे तुम्हारा तो डिनर बहुत अच्छा है। और क्रिसमस वगैरह की पार्टी होती थी तो उसमें भी क्या करते थे, वहाँ रिवाज है हर एक कोई न कोई डिश ले आवे, ब्रिंग योर ओन डिश, और फिर सब मिलकर खाते हैं। ये बहन क्या करती थी, सेंटर पर रहती थी तो सेंटर से, क्योंकि न्यूजीलैंड में क्या है कि गुजराती लोग बहुत है, तो उसको मुठिया है, ढोकरा है, ऐसा कुछ बना कर देते थे। तो सब उसका प्यार से खाते थे, वो किसी का नहीं खाते थे। तो विदेश में तो कई बच्चे भी है ना, वेजिटेरियन हो जाते हैं। वहाँ उनको एक समय स्कूल में मूवी दिखाए, बैब करके, जिसमें क्रिसमस को लोग है मुर्गी और सब काट के खाते हैं, तो बोलते हैं, फिल्म में तो बोलना शुरू करते हैं ना, प्राणी भी बोलते हैं, अपना दुख प्रदर्शित करते हैं। तो देखकर आने के बाद और एक बारी वहाँ कत्ल खाने में गए थे दो भाई, और देखा कि कैसे कत्ल होती है। घर में आके कहते, माँ तू हमको क्या खिलाती है, कल से हम ये खाएंगे नहीं मीट। तो क्या है कि जितना हम मजबूत रहते हैं, उतना फिर धीरे धीरे सामने वाले को झुकना पड़ता है। हम थोड़े ठंडे रहते हैं तो सामने वाला भी फोर्स करता है। तो बंधन काटना अपने ऊपर है।
तो क्लियर हुआ बहन जी, बंधनों को कैसे काटना है। बहुत सुंदर। और किसी का दूसरा प्रश्न, आ जाइए।
ओम शांति। आजकल हम मनुष्यों को ईमानदारी व वफादारी व्यक्ति विशेष के प्रति तो परलक्षित होता है, लेकिन ईश्वर के प्रति वो अल्प और उपेक्षित है, क्यों और इसे हम कैसे बढ़ाएंगे?
हम आपस में जब व्यवहार में रहते हैं वहां ईमानदारी, तो हम उसके प्रति मतलब सजग रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारी ईमानदारी सच्चाई वो बहुत कम रहती है, वो कैसे बढ़ाएं?
हमारी ईमानदारी क्यों नहीं रह सकती धनवान के आगे?
बोलो क्यों नहीं रह सकती?
धनवान के आगे क्यों नहीं रह सकती?
भगवान के प्रति हमारी वफादारी कितनी है वो कहाँ से पता चलेगा? व्यवहार जगत में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन भगवान के प्रति हमारी वफादारी ईमानदारी है ये कहाँ से पता चले, कैसे पता चले?
देखो, जो विकार में जाते हैं ना, उसके चेहरे से पता लग जाता है। और क्या होता है, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है। हमारे पास एक भाई था, बहुत पुराना था, पर पवित्र नहीं रह सकता था। फिर आकर वही प्रश्न पूछता रहे, 5000 वर्ष का कल कैसे है, क्या है, क्या है, घड़ी घड़ी उसको समझाओ और घड़ी घड़ी वही प्रश्न पूछता रहे। तो जैसे बाबा ने आज बताया ना, उसका बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। ज्ञान बुद्धि में नहीं जाता। जो पवित्र रहते हैं उनके चेहरे पर चमक होती है, और चाहे वो सफेद कपड़े पहने ना पहने मालूम पड़ जाता है ये ब्राह्मण है।
भैया जी, क्लियर हुई बात? हाँ, आंशिक, पार्शियली आंसर्ड, फुल्ली नॉट आंसर्ड, पार्शियली आंसर्ड, पार्शियली सेटिस्फाइड। हाँ जी, आइए।
विदेश की एक बहन है, वो अहमदाबाद से आती थी। एक वर्ष उसने सफेद कपड़े नहीं पहने थे और उसको शक था कि कस्टम ऑफिसर पहचानेगा या नहीं, क्योंकि अहमदाबाद में कस्टम ऑफिसर सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारियों को, ओम शांति करते रहते हैं। पर उस बहन को ऑफिसर ने ओम शांति का पहचान लिया कि ये ब्रह्मा कुमारी है।
ओम शांति दीदी। चलते चलते ब्राह्मण जीवन में कभी पुरुषार्थ का मार्ग जब हम शर्ट चेकिंग करते हैं रखते हैं तो एक रस बाबा जैसा सता है नहीं होता है, कभी कभी बहुत ऊपर नीचे ऐसा आ जाती है। क्योंकि मैं मेरे पर्सनल अनुभव करती हूँ कि दूसरों को भी इसका शायद लाभ होगा, लेकिन मेरा मतलब ये, जब मैं नवीनता लाने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी नवीनता आती है, कभी कभी नवीनता में भी लाने में भी ऐसा हो जाती है, मतलब ये ग्राफ पूरा एकदम बाबा जैसा साते है, ऐसे नहीं होता है। तो दीदी से मैं स्पष्ट जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हम जीवन में लाए, कैसा विधि लाए जैसे इस ग्राफ को हम एक रस बना पाए। ओम शांति दीदी।
दीदी, पुरुषार्थ करते हैं हम, लेकिन पुरुषार्थ का ग्राफ जो दिनों दिन बढ़ता चला जाना चाहिए वो ऐसा नहीं होता है, बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, उसमें एक रास्ता नहीं है। तो क्या करें उस एक रास्ता को लाने के लिए?
कल की मुरली में ही था ना, हमारी मंजिल ऊंची है जहाँ चढ़ना है और गिरना है और संभलना है। तो क्या है कि संभलते रहना है। माया तो ऐसी है जो जरा भी देखती है कि हमारा अटेंशन कम है तो गुस्सा मारती है। माता यहाँ जगह है,
इधर इधर आ जाओ,
तो एकदम ठोस लगाती है। इसलिए संभलना है। एक दरवाजा खोला तो बहुत खुल जाएंगे, थोड़ा ऐसा हो जाए। ये बैग कितनी किसकी है? इसलिए संभलना है।
तो बहुत ही स्पष्ट आंसर है अभी तो, ये बच्चा भी चलना सीखता है तो एक रस नहीं चलता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है उठता है, लेकिन फिर जब बड़ा होता है फिर नहीं गिरता है। मतलब मैच्योरिटी डेवलप करनी होती है और वो अभ्यास से गिरते चढ़ते मैच्योरिटी आ जाएगी और हमारा पुरुषार्थ का ग्राफ एक रस बन जाएगा। बहन जी ओके है? हाँ ओके। हाँ जी, और कोई आ जाइए, आप भी रेडी रहिए यहाँ पे नेक्स्ट के लिए।
ओम शांति। एक चीज पूछना है, एकाग्रता बढ़ाने की सहज विधि क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं योग पावरफुल होना चाहिए, और कभी कभी क्या होता है बीच में डिस्टर्बिंग थॉट आ जाता है, बैड चिंतन जो मैंने चाहते तो नहीं है पर ऑटोमेटिक ही उठते रहते उभरते रहते हैं, तो ऐसे कारण जो पावरफुल नहीं होता है कभी कभी बाबा फुल स्टॉप लगाओ तो अंतर मन में कुछ हार्ट होता है कुछ ऐसी होता है तो बार बार वो चलते रहता है माने बंद माने चाहते हुए भी बंद नहीं होता है वो अंदर ऐसे घूमती रहते हैं कभी कभी ऐसे बहुत बार होता है। इसी कारण योग कमजोरी भी हो जाती है, जितना आनंद आना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, नवीनता भी कम हो जाती है। क्या सहज उसका क्या अभ्यास किया जाए एकाग्रता बढ़े?
मेन क्वेश्चन है दीदी एकाग्रता कैसे बढ़ाए, एकाग्रता बढ़ाए कैसे?
प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे, छोड़ नहीं देना है। सोचे के क्या होता है कई बार अलबेले हो जाते हैं, अमृत वेला उठते तो है पर योग नहीं लगता है, उठने का क्या फायदा करके हम सोए रहते हैं। या दिन में बहाने तो बहुत है, इतना बिजी है काम में एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। आजकल तो ऑस्ट्रेलिया में भी कंप्लेन करते हैं, पहले तो क्या था गवर्नमेंट की नौकरी माना मजा करो, बीच बीच में चाय पियो गपशप करो सिगरेट पीने जाओ, तो समझो एक दिन में 4 घंटे काम करते थे। अभी नौकर काम कर दिए, एक को 2 का काम करना पड़ता है, तो कहते हैं हम तो इतने बिजी है टाइम ही नहीं मिलता। हम कहते हैं चलो चाय पीने गए, वो भी टाइम योग कर सकते हो गपशप करने के बजाय। फोन ऐसे उठाते हैं उसमें भी योग कर सकते हो, टॉयलेट में जाते हैं योग कर सकते हैं, तो टाइम निकालना पड़ता है बिजी लाइफ में। और हमारी दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे करना ही है तो हो सकता है।
बहुत सुंदर।
कोशिश करेंगे कहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे, क्या करें कैसे करें ये क्वेश्चन करेंगे। तो आजकल बाबा कहते हैं क्वेश्चन नहीं फुल स्टॉप, करना है होना है करके ही रहेंगे।
ओके ब्रदर आइए आप। कथनी और करनी को एक समान कैसे बनाएं?
ताकत चाहिए, शक्तिवान है वो कैसे क्यों क्या नहीं पूछते, करना है हो जाएगा। तो अभी योग द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, तो जो सोचते हैं वो बोलते हैं और करते हैं सब समान हो जाए। योग पावर और दृढ़ता,
तो पूरा आधार मदार है दृढ़ता पर। जितनी अधिक दृढ़ता होगी उतनी अंदर बाहर एक होंगे, नहीं तो अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य रहा कि दीदी के सानिध्य में बैठकर ज्ञान गंगा में स्नान करने को मिला, अपने प्रश्नों का समाधान मिला। बाहर में तो लौकिक में किसी संस्था में जाओ और उसके चीफ से, कुछ हेड से, पोजीशन वाले से मिलना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ हमारे जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हमारे बीच में आराम से बैठे हैं फैमिली की तरह, और हम उनके सानिध्य में बैठकर ज्ञान भी सुना और हमारे मन में जो प्रश्न है वो भी हम बहुत इजीली पूछ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन करने के लिए और ये लास्ट है अभी है। वही वही है दीदी प्रश्न कि पावरफुल अमृत वेला करना तो चाहते हैं पर अमृत वेला पावरफुल नहीं होता है। हाँ, मनन शक्ति हमारी कम है तो कैसे बढ़ाए उसको।
मनन
बैठ जाए। हाँ, कभी धोखा दे देती है हमारे मन बुद्धि। हाँ? जी तन से भी परेशानियां रहती है तो हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हाँ, सामाजिक परेशानियों से घिरे हैं, इनसे हम बाहर कैसे निकले।
अमृत वेला का महत्व जानना, संगम युग का महत्व जानना, तो संगम युग में हम कुछ वेस्ट नहीं कर सकते, सब बेस्ट तरीके से लगाना है। क्या है, अलबेलापन आता है, थके हुए हूँ, रात को देरी से सोई हूँ, कैसे उठूंगी, क्या करूंगी, ये थोड़ा अपने में संशय आता है या अलबेला आलस्य आता है, और ठंडी है चलो गोदड़ी में सोकर बाबा को याद करेंगे, तो लेटे लेटे निंद्रा धाम में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए रात को निर्णय करके सो कि मुझे पावरफुल अमृत वेला करना है, और लक्ष्य रखो कि आज मुझे बाबा से क्या शक्ति लेनी है। बैठने के पहले फ्रेश होकर बैठो, हाथ मुंह धुलाई करके या स्नान करके चाय पानी पी के, तो फ्रेश होंगे तो पावरफुल योग होगा। और टाइम पर सो जाओ, टाइम पर उठो। कोई लोग तो 2-2.5 बजे उठ जाते हैं और फिर जुटके खाते रहते हैं, तो 4-5 घंटा यदि सोते नहीं, कम से कम 5 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा हो जाए तो भी अच्छा है। बस तो इसी रीत से सारे दिन में भी आत्माभिमानी रहना है, मन पर ध्यान रखना है कि मन बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है, क्योंकि कहाँ इंटरेस्ट होता है ना तो मन बुद्धि चली जाती है, पर चिंतन में इंटरेस्ट है तो क्या करते हैं, जैसे भी फ्री हुए फोन उठाया, क्या किया आज, कल की तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी थी, कहाँ से खरीदी है, आदि आदि। तो ये देखना है कि हमें वैराग्य हो, दुनियावी बातों में अभी इंटरेस्ट ना हो, इच्छा मात्रम अविद्या यहां से होने चाहिए। सत्युग में तो सब मिल जाएगा, पर यहां कोई इच्छा ना हो, नहीं तो बुद्धि वहां जाएंगी तो सारा दिन भी ज्ञान मंथन और अमृत वेले में भी सदर्शन चक्र फिराओ, ज्ञान मंथन करो या उसी समय अव्यक्त मुरली पढ़कर उसका मनन मंथन करो।
तो बहन, नहीं अभी टाइम हो गया, अगली क्लास आरंभ करनी है हमें, तो यहाँ पर ही हम पूरा करते हैं। दीदी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, जो हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए और हमें लाभान्वित किया। अच्छा लगा सभी को? आज हमारे बीच में दादियाँ तो नहीं है, साकार में मम्मा बाबा तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने साकार में मम्मा बाबा की पालना ली है, दादियों की पालना ली है और वो पालना लेकर बाबा के अनुसार अपने जीवन को ढाला है, उनके साथ पूरा एक घंटा बैठना अहो सौभाग्य है ना। तो पुनः पुनः दीदी का धन्यवाद। दो मिनट याद में बैठेंगे फिर उठेंगे। दीदी हमारे बीच से अभी छुट्टी लेंगे और हमारे टी ब्रेक का समय है, लेकिन आपने देखा फोटोग्राफी वाला भाई आया इशारा देने कि धूप अच्छी निकली है, फोटो अभी लिया जा सकता है। सवेरे नहीं हुआ ना दीदी, बारिश थी तो